لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مجمع ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بے گزریز قرب قیامت کے دور میں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہے، اور این سعادت بزور بازو نیز تان بخشت جائے بخشیں گا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب ہم کو نوازا، پہلے ایمان سے نوازا، پھر اسلام سے نوازا، اعمال ایمان ان سے نوازا، پھر ہماری اپنی گندگی کے باوجود مالک نے اس پیارے پاکیزہ دین کے لیے ہمیں قبول فرمایا. اگر کوئی کسی مسجد میں اذان ہی دیتا ہے، لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث نے اس کو ایک بہت بڑی فضیلت دی ہے. قیامت میں وہ ایک اعزاز کے ساتھ ہوگا. جب مؤذن کا حال یہ ہے تو امام کا حال کیا ہوگا؟ اور جب امام کا حال یہ ہے تو وہ شخص جو بچپن سے لے کر اخیر تک اللہ نے اپنے کلام کلام پاک کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ساتھ مشغول کر دیا، اللہ نے اس کو کتنی بڑی دولت سے نوازا. ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں دیوبند پڑھتا تھا، چھٹی میں گھر آتا تھا شعبان میں، گھر میں میرے دو بہنیں تھیں، کیونکہ غریب تھا تو میری بہنوں کے کپڑے اکثر پھٹے ہوئے رہتے تھے، وہ کچھ میلے بھی رہتے تھے، والد صاحب بیچارے زمینداری کرتے تھے اور والدہ بھی بیچاری کام کرتی رہتی تھی ہر وقت، جیسے ہم لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. کہا گھر آ کر میں سوچا کرتا تھا کہ اس گھر کا میرے اوپر حق ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ والدہ ہے، تو مجھے اپنے والد کی اب کچھ مدد کرنی چاہیے. کہا رمضان میں جب میں کہیں امامت کرتا تھا تو پورے مہینے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ بس شوال میں اب میں کچھ کام شروع کروں گا تاکہ میرے گھر کو کچھ سہارا ملے، سپورٹ ملے. کا کوئی بری بات نہیں سوچتا تھا، میں سوچا کرتا تھا میں किताबें लाऊंगा खरीद कर अपने अकाबिर की, फिर एक दुकान खोलूंगा उनको बेचा करूंगा, तो दो फायदे हो जाएंगे, एक को अपने अकाबिर की किताब दीनी किताब फैलेगी तो दीन का काम होगा और मुझे कुछ नफा मिलेगा, पैसा कमाऊंगा तो अपने घर का खर्चा चला लूंगा, तो मेरी इन बहनों का हाल कुछ ठीक होगा, वालिदैन का हाल कुछ ठीक होगा। का मैं पूरा रमजान इसी प्लान के बनाने में गुजारता था, शव्वाल आता था तो मां बुलाती थी, सबको मालूम ही है शव्वाल के पहले हफ्ते में शुरू होता है मदारिस में वापस जाना, तो मां कहती थी बेटा हमारे घर में गुर्बत है, तो तू देख रहा इन बहनों को घर की हालत को सादगी को है तो नहीं, मौका कि तू और पढ़ ले, लेकिन तेरे बाप ने और मैंने मशवरा किया कि इतना तूने पढ़ लिया कहां तुझे बीच में रोक देंगे, ले ये 2000 रुपया और चला जा, हम गुर्बत से अपना पेट पाल ले। तब फिर मैं चला जाता था और जब मदरसे में आदमी पहुंचा तो भूल जाता है सब घर का हाल, क्या मैं वहां के पढ़ाई में खेल में कूद में जो कुछ भी होता है मदरसे में वो सब करता था, भूल जाता था घर का हाल, कभी खतवत लिखता था, फिर शाबान आता और मैं घर पहुंचता फिर घर का मंजर सामने आता, फिर पूरा रमजान मेरा इसी प्रोग्राम बनाने में खर्च होता। लेकिन शव्वाल आता तो बूढ़े वालिद बुलाते, कहा बेटा है तो घर में जरूरत, सोचा भी था आप तो कुछ काम कर ले, मैंने तुझसे रमजान के दौरान कहा भी कई बार, मगर हमने तेरी मां ने और मैंने मशवरा किया, ले ये 1500 रुपया हमने जमा कर रखा है, ले ले इसको और जा एक साल और पढ़। कहा यही करते करते मैं फारिग होकर आया और फिर आके मैं मस्जिद में लग गया और मदरसे में लग गया। खुलासा क्या हुआ कि मैं तो हर साल प्रोग्राम बनाता था अभी इस तालीम को कुरान को हदीस को छोड़ने का, और अल्लाह करता था मेरे वालिदैन के दिलों में ऐसी चीज इल्का, उसने कहा तू छोड़ने का इरादा कर लेकिन मैं तेरा मालिक तुझे अब छोड़ूंगा। मेरे और आपके साथ अल्लाह ने शायद ऐसा ही किया है, वरना हम लोग कहां इस लाइन के लायक हैं। हमारी अपनी तस्वीर तो हमारे सामने है, हम में से कौन यह दावा करेगा कि मैं इस मुसल्ले पर खड़ा होने के लायक हूं, यह तो हमारे मुक्तदियों में से कोई जाने किस नियत का और इखलास का होता है, ये तो अल्लाह ने लगा दिया चलो तुम इमामत संभालो। लोग इस गए गुजरे दौर में भी 10 गालियां देने के बावजूद दिल में इमाम साहब का एहतराम तो रखते हैं, वो आखिर मजबूर है, रेगिनी के दरिया में गोते खाने के बावजूद वो लोग अपने दिल में कोई चीज अंदर छिपी हुई पाते हैं कि ये मेरे इमाम साहब हैं, और कोई मसला आता है उस वक्त कहते हैं ये इमाम साहब नहीं बोल, ये वो इमाम साहब ये वाला नहीं कोई इमाम साहब। और जो लोग बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में यहां भी दूसरे मैदान में यानी मदरसे की चार दीवार से बाहर जो निकलते हैं तो जितने ये इंटेलेक्चुअल्स हैं फिलासफर्स हैं और ये पॉलिटिशियंस हैं उनको कोई बात कहनी होती है तो हर वक्त कहते हैं मौलवी साहब लोग तो आप ही की मानते हैं हमारे ऐलान कर की तरफ ध्यान नहीं देते, जरा ये प्रोग्राम भी वहां से चलाइए ना। उम्मत चाहे न चाहे खाही न खाही मजबूर है इस बात को तस्लीम करने पर कि ये जिस आदमी के पास दीन की सयादत और कयादत है आखिरकार मामला अल्लाह ने उसके हाथ में दे रखा, वो जिस नहज पे चाहे उम्मत को लेके चली जाए। ये वजह आप देखेंगे हेल्थ वालों का कुछ करना होता है तो घुस जाते इमाम साहब इसका भी ऐलान कर देना, मदरसे में आएंगे मुफ्ती साहब इसका भी ऐलान कर देना। उम्मत मजबूर है हर जमाने में इमाम की आलिम की हैसियत को तस्लीम करने पर, अल्लाह ने हमको वो मकाम दिया। हालांकि कभी कभी कोई आमी किसी खास सिफत में हमसे कहीं आगे बढ़ता है। हजरत मियां जी मेहराब एक दफा कश्मीर आए चंद उलमा जमात के और इमाम, हम उस जमाने में मियां जी कहते हैं, मियां जी कौन होता है जो हाफिज ना हो कारी ना हो बस मियां जी, हम बात तवज्जो से सुनते नहीं थे उस वक्त, उन्होंने पकड़ लिया जब श्रीनगर का इज्तिमा होने वाला था उससे पहले पहली बात है ये,
वो जमात आई थी खुशनसीब जिम्मेदारों में काम करने के लिए और उलमा में, तो आके बिठा के कहने लगे, चंद ही उलमा बैठे थे, बताओ मौली साहब ऐसी बात करते थे। कहा हजरत मौलाना इलियास साहब अली रहमान ने एक दफा उलमा में बात की, कहा मैं साथ था, मुझे वो मिनवानी याद है। तो हजरत मौलाना इलियास साहब ने उलमा से कहा, साहब बताओ मौली साहब, दुनिया में अल्लाह ने जगह तो सारी बनाई, इन जगहों में अफजल जगह हर हर मोहल्ले में हर हर इलाके में किसको करार दिया है? तो बदाउद शरीफ की रिवायत भी है, तो अफजलुल बुका मसाजिद हुआ, तो मस्जिदें। फिर पूछा मौलाना इलियास साहब अलैहिस्सलाम ने उनसे, कहा मस्जिदों में सबसे अहम तरीन मकाम कौन सा है? तो उन्होंने कहा तो इमाम का मकाम है, मस्जिद में सबसे बड़ी जगह अहसन हाल इमाम है। फिर पूछा बताओ दीन में ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन अमल कौन सा है? तो उलमाए थे, उन्होंने कहा नमाज। तो मौलाना इलियास साहब ने कहा कि अल्लाह ने आप उलमाओं को इमामों को अफजल रुका में अहसन हाल और अफजल आमाल में खड़ा कर दिया। कहा उसके बाद कहा, कहा अच्छा बताओ सबसे ज्यादा अफगजुल बिलाद क्या है? तो ने कहा अस्वाक बाजार को। कहा सबसे ज्यादा गफलत पैदा करने वाला क्या है? मकामी मदहा में कुरान पाक ने बयान किया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारत वाला बै, तो उसका मतलब है कि तिजारत और बै तो सबसे ज्यादा गफलत करने वाला है और वो नहीं भूल रहे हैं, तभी उसको इतने अहमियत के साथ जिक्र किया। फरमाया सबसे ज्यादा गाफिल बना देने वाला है बै ओ शिरा तिजारत वला बै उनका। कहा एक आदमी जो अब गजुल इबाद में है और वो है सबसे ज्यादा गफलत करने में डालने वाले काम में, कहा लेकिन एक जगह डर लगता है, ये मौलाना इलियास साहब ने फरमाया। कहा बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि अफजलुल अमल इबादत नमाज के अंदर ये अहसनुल हाल इमाम अफजलुल मकाम में अहसनुल हाल में खड़ा होके इमामत में पढ़ तो रहा है किरात और जहन में सोच रहा है कि मुशीद वो छन तनखा जुमा बराबर कि आज नमाज पढ़ के अच्छा दई बही मत, तुम्हें से हो सकता है ऐसा हो रहा हो और उधर वो अफगजुल इबाद अफगजुल बुका में बैठा जो अफगज है ताजिर बैठा है बाजार में अस्वाक में और लगा है सबसे गफलत वाले मामले में और आया गाहक सोडा लेने के बाद और उसने सुनी थी आप ही से हदीस, आपने कहा था मन गश्चना फलैसा मिलना, तो उसने तराजू हाथ में उठाई और सोच रहा था कहीं मैं इस हदीस का मिजदाक न हो जाऊं और वो ताजिर आपकी बात सुनकर उस वक्त कांप रहा हो, बताओ अच्छे हाल में तुम हो या वो। इस तरह मियां जी ने ये बात सुना दी तो हम लोग तो बैठे थे चंद से तो बाकी कहा हम तो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये दिल का रुख सही हो जाए बस, लेकिन इसमें शक नहीं, हमारा हाल कुछ भी हो वो हमारी जाती कैफियत तो हो सकती है लेकिन मकाम मकाम ये वो है जिसको आजकल भी दीन से दूरी वाले जमाने में भी कायनात तस्लीम करती है कि अगर कोई हुक्म चल सकता है तो यहां से, अगर कोई हिदायत दी जा सकती है तो यहां से, अगर कोई फैसला साजिर होता है तो यहां से, और अगर उम्मत में खैर शर पैदा हो सकता है तो यहां। इसलिए सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको अल्लाह ने इन मस्जिदों का जिम्मेदार इबादत में बना दिया है और इसमें फजीलत बहुत है, वो सब आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा बयान भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हमें महसूस करना चाहिए और जिम्मेदारी आदमी महसूस करेगा फिर उस जिम्मेदारी को निभाना اس میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت اور اللہ کی مدد کے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں ہو نہیں سکتا. اور اللہ غنی ہے، اللہ کے غنی ہونے کا ہمیں ہر وقت استظہار ہونا چاہیے. کیوں ہم خود ہی پڑھتے بھی پڑھاتے ہیں، ان اللہ لیؤیدو ھذا الدین بالرجل الفاجر. اس میں ہمیں ڈر میں رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کے دین کو ترقی دینے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہو جائیں، اور اس میں ہم اللہ کے دربار کے لائق رہیں، اللہ غیب سے ایسا بنا دے. اور اس میں ہمیں اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ جب دنیا کا احسان کرنے والا نوازتا ہے تو بس نواز ہی دیتا ہے جب وہ سخی ہو، اللہ بھی بخل سے کام نہیں لے گا. جب اس نے لگا دیا ہے اور ہم متوجہ رہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارا بیڑا پار کر ہی دے گا. اب جو آج آپ لوگوں کو یہاں دارالعلوم بلالیہ نے بلایا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے یاد فرمایا، وہ کیوں فرمایا؟ وہ سارا یاد کرنا ایک خاص مسئلے سے متعلق ہے، اور وہ مسئلہ مفتی صاحب نے ابھی بیان کر دیا اور سب حضرات اس کو جانتے ہیں. اگر ہماری اس امت کے اماموں نے، چاہے وہ طلبہ ہوں، چاہے غیر طلبہ ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بزرگ ہوں، چاہے تجربہ کار ہوں، چاہے نوآموز ہوں، اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے دل کا فکر بنا لیا تو اللہ کی نصرت آتی ہوئی دیر نہیں لگتی، کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے. اور کسی بھی مسئلے کا علماء کے اماموں کے درمیان زیر بحث آنا، ان کے فکر کا محور بن جانا، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک اس بارے میں خیر کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، اور وہی امید ہے، ورنہ پردہ پڑا رہتا ان چیزوں پر. آپ سوچئے، جو بچے سن 2004 میں، اب ہے 2011، 7 سال پہلے تھرڈ پرائمری میں تھے، تیسری میں، اور وہ بیچارے اتنے معصوم، وہ وضو نہیں جانتے، وہ نماز نہیں جانتے، ان کو کسی بدبخت پادری نے اس وقت بپتسمہ دے دیا. تو اب 7 سال گزرنے کے بعد وہ بھی بھول چکا ہوگا وہ بچہ بھی، اور 7 سال گزرنے کے بعد اس بچے کا معلوم نہیں کیا کیا ہو اس نے. لیکن اگر 7 سال کے بعد وہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے کسی کا، تو اس کو کہیں گے کہ اللہ نے رحم کر دیا، اتنے سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی واپسی کا انتظام کر دیا. یا ایسا ہے، اگر 6 سال پہلے کسی آدمی نے طلاق کھا لی تھی اور اس کے بعد بغیر شرعی حل کیے ہوئے پھر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اگر 7 سال کے بعد بھی اس کو تنبیہ ہو گئی کہ تجھ سے تو غلطی واقع ہو گئی، تجھے تو بائن کی وجہ سے نکاح دوبارہ پڑھنا تھا، اب 7 سال کے بعد بھی اس کو توفیق ہوتی ہے اور اس کا مسئلہ اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کو ہم خیر ہی کہیں گے، برا نہیں کہیں گے. کیونکہ واپس آ کر وہ 7 سال بھی گزر گئے، ابھی اس کی پاکی کا، اس کی زندگی کی صفائی کا موقع اللہ نے اس کو ہاتھ آنے دیا. اور جو تازہ ہوگا اس کا تو مسئلہ ہی اتنا مشکل نہیں، تازہ جو ہے وہ تو جلد ہی اللہ کی طرف واپس رجوع کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو اور بھی احسان کا مسئلہ ہے. لیکن اب سوال ہے ہم لوگوں کی ذمہ داری کا. یہ مقولہ سب کو ذہن میں ہے، کہا جاتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم اتحبون ان یکذب اللہ ورسول. اگر آدمی نے اپنے مخاطب کی استعداد کو نہیں سمجھا، مخاطب کی استعداد کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ بھال کے اس کا علاج نہیں کیا، तो मुश्किल है, मामला हल नहीं हो सकता। उम्मत की सतह इस वक्त दीन की क्या है? उम्मत की दीन की सतह यह है, और ये पूरे कश्मीर में यह माहौल है, उम्मत की दीन की सतह इस वक्त यह है कि हमारे अपने रिश्ते में अड़ोस पड़ोस में हमको ऐसा जवान मिलेगा जो दुनियावी तालीम के एतबार से, अब तो तालीम तालीम नहीं है, पुराने जमाने में तालीम इल्म था, आज के जमाने में तालीम जो है ये रोजगार है, और उसमें मगरिब ने पूरी दुनिया को उस मकाम पर लाकर डाल दिया। अब तो वो कहते हैं कि शुरू से ही तुम एक ही सब्जेक्ट ऐसा पकड़ कर चलो कि उसी में तुम माहिर हो जाओ। उनके यहां ये मसला है ही नहीं कि इंसान को इंसानियत की भी जरूरत है, उनके यहां तो काबिलियत ये है कि आदमी नंगा चले तो पूरी दुनिया उसको ताज्जुब से देखने लगे। मेरे और आपके यहां तो ये है कि बाज उलमा तो यूं कहेंगे अगर तुम्हारा थोड़ा सा हिस्सा सतर का भी खुला तो तुम्हारे लिए मसला पैदा हो जाएगा। हमारे यहां तो ये मसला है, उनके यहां तो मसला है कि मनु और तनु आप शराब पी लो, कोई हर्ज ही नहीं है, उसको तज़किरों में करेंगे, फख्र से लिखेंगे, और हत्ता कि एक ऐसी जरूरत, आप लोग तो नए नए हैं, बहुत से इन प्राणों को मालूम है, 8-10 साल हो गए इसी मुल्क में एक मसला चला, जब यूं लिखा जाता था अखबारों में कि मुल्क के इतने बड़े आदमी ने आज सुबह अपना पेशाब पिया, ये इस मुल्क में हुआ, और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे थे। लेकिन मेरा और आपके यहां तो मसला यह है कि आप 10,000 रुपए का सूट पहन के बाहर निकले और गाय का, बैल का, घोड़े का, गधे का थोड़ा पेशाब का छींक आपके कपड़े पर आया तो आपके चलते हुए पैर रुक जाएंगे। आप कहां जाएंगे? वापस घर। क्या कहेंगे कि जी मेरे कपड़े पास, घर वाले कहते इस पर तो कोई निशान नजर नहीं आता, डब्बा नहीं, तो हम कहेंगे तुझे क्या लेना, मैंने तो देखा पेशाब की छींट आती हो, सूख गई होगी, तुझे कपड़ा दूसरा दे दी। मेरा और आपका तो मसला यह है कि हम उस छींट को बर्दाश्त नहीं करते जबकि दुनिया की कौमें उनके बड़े सरबरा फख्र से कहते हैं कि हमने अपना इतना पेशाब पिया। वो लोग तो फख्रन कहेंगे ये इस जमाने की अल्कोहल है, वो उस जमाने की है, ये इस किस्म की शराब है, वो उस जमाने का वाइन है। मेरे और आपके यहां तो मसला वाजे है, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारे यहां तो पेशाब का कतरा कपड़े पर लग जाए जिस तरह वो नापाक है, ऐसे ही शराब का कतरा अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो जो हुक्म पेशाब का है वही शराब का, फिर पीने की हद तक नहीं, पाकी और नापाकी हद तक। माला बुद्ध से ही हमारा यह मसला शुरू होता है। उनके यहां तालीम है पेट का हल, हमारे यहां है इल्म, इकरा के साथ बिस्म की कह है, इकरा बिस्म रब्बिक, हमारे यहां मुतलक इकरा नहीं है, हमारे यहां हुक्म यह नहीं है कि बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमारे यहां हुक्म है इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ोगे अल्लाह, और उस अल्लाह को सिर्फ अल्लाह नहीं बल्कि रब रब की हकीकत के साथ तस्लीम करो, तब आगे कदम बढ़ाना। इसीलिए जहां तालीम चलेगी उनकी वो ढूंढेंगे छोरी, दुनिया कैसे बनी कैसे नहीं बनी क्या गई। कश्मीर का एक बहुत बड़े महकमे तालीम के अफसर से मैं पिछले हफ्ते इतवार पिछले शनिचर को मिला, मैं उनको दिखा रहा था कि 9th के निसाब में हिस्ट्री में यहां तो है रिकंस्ट्रक्शन, यहां है फिर डेवलपमेंट, उसके बाद उसमें है एजुकेशन और हेल्थ में मुस्तकिल चैप्टर पहला बना दिया है रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, और ये बहुत सोच समझ के होता है क्योंकि नाइन्थ में लाखों लड़के होते हैं। एट्थ के गुलिस्तान उर्दू में सबक है साइक्लोन, तो उसमें वो तूफान की कहानी है कि तूफान आया समंदर में थे, कोई इधर भागा कोई उधर, क्योंकि वो उर्दू जुबान की किताब है इसलिए उसमें कहानी लिखी है। कहानी के बाद उसमें अब अल्फाज का इस्तेमाल सिखाएंगे क्योंकि उर्दू की किताब है, तो उसमें मसलन लिखा है मल्ला किश्ती वाला, तो उसमें कहानी में लिखा है कि जब तूफान आया कि उसका समंदर का किश्ती का, तो लोग भाग रहे थे कोई इधर कोई उधर, मैं फला साहब को ढूंढ रहा था, तो उसमें ये लिखा है, वो तो जब मजमून निगार लिखेगा उसने लिखा है उस वक्त क्या हाल था पूरी किश्ती का, कोई तस्बीह पढ़ रहा था यानी मुसलमान, कोई सीने पर सलीब का निशान बना रहा था यानी ईसाई, कोई माथा टेकने लगा था यानी हिंदू, यानी वो सब लोग थे ये सब कर रहे थे। उसके बाद लिखा फिर इस तरह हुआ, फिर इस तरह किश्ती रुकी, फिर ये हुआ, सब खत्म हो गया, सबक में कहानी है वो साइक्लोन। लेकिन जब फिल्म द ब्लैंक शुरू हुआ है एक्सरसाइज उसके बाद है मश्क है, तो उसमें अल्फाज का इस्तेमाल दिया है मल्ला, इसको इस्तेमाल करो आगे फिल्म द ब्लैंक से, सलीब किश्ती ये सब लफ्ज लिखे। लेकिन जहां भरना है इस जुमले को लफ्ज सलीब को, ऊपर तो कहीं किताब में कुछ जिक्र नहीं है, वहां लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देश देश पर चढ़ाया गया, पूरे सबक में कहीं हजरत ईसा का तज़किरा नहीं है, और सबक में सिर्फ इस मुनासबत में सलीब का लफ्ज आया कि उस वक्त किश्ती के तूफान की वजह से कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई सलीब का निशान बना रहा था सीने पर, कोई पूजा कर रहा था। सबक की एक्सरसाइज जब बनेगी अगर यही लफ्ज का इस्तेमाल सिखाना है वो लिखते, तूफान के वक्त बाज लोग देश देश करने लगे, सलीब के लफ्ज का इस्तेमाल ही सिखाना, हजरत ईसा को कहां से लाए, और फिर हजरत ईसा का वो मसला यहां कैसे फिट किया जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान झगड़ा है। जब ये समझा रहा था मैं, अब उन्होंने इस एडिशन में उसको खत्म कर दिया, मैंने वही जुम्मे में ही फिर वो किताब खरीदी क्योंकि आगे जुम्मे में थे। जब मैंने बहुत बड़े उस ऑफिसर को कहा ये, तो वो हंस के कह रहा था वो तो हमें बचपन में ही जब हम वहां पढ़ते थे मिशनरी स्कूल में, तो हमने तो उस वक्त पहली बार देखा लेपर अस्पताल, हम तो उन्हीं के साथ गए वहां कपड़े बांटते, ये तो हमने उन्हीं से सीखा, ये मुसलमान अफसर कह रहा था, तो साथ में कह रहा था। पर वो जो हमें मस्जिद का मौली साहब पढ़ाने आता था, तो ये जो मुझे मिशनरी स्कूल में सवाल सिखाते थे, मौली साहब तो मुझे डांटता था और मेरे घर वालों को कहता था, मेरे माँ बाप भी मुझे डांटते थे। मैंने कहा आखिर किस बात पर, तुम तो उसके पास मुरानी का रहसों कुरान पढ़ते होगे, कहा लेकिन वो हमको सिखाते थे ना मौली साहब, ये घर में पूछ लो तुम कि दुनिया किसने बनाई, खुदा ने, तो खुदा से पहले क्या था, कहा मैं यही पूछता था फिर मौली साहब से, जब मुझे कुरान पढ़ाने आता मौली साहब मुझे डांटता था। तो जहां पढ़ाई इस अंदाज से हो रही हो, हम उसको पढ़ाई नहीं कहते, हमारे तो पढ़ाई है कि तुम पहले तस्लीम करो इकरा बिस्म रब्बिक, इसमें रब से हटकर हमारी पढ़ाई नहीं है। हाँ जहां किसी को इश्काल हो वहां समझाएंगे वो अलग मामला है, लेकिन जहां हम तालीम को इख्तियार करेंगे वहां तालीम वो इख्तियार करेंगे जो इकरा बिस्म रब्बिक होगा। अब जब उम्मत की सतह ऐसी हो, उम्मत की सतह ऐसी हो कि ईमान वाला एक बड़ा जिम्मेदार वो हंस हंस के कह रहा हो कि मौली साहब इमाम साहब ने मुझे बचपन में ये सवाल का जवाब नहीं दिया और अब तक उसके जहन में वो सवाल कायम हो, अब तक एक दूसरा बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा जिम्मेदार कश्मीर का इंतजामी लाइन का, उससे जब मैंने कहा, मैं उसको समझा रहा था आमाल में कमी है और ईमान में कमी है, दोनों में फर्क कितना है, तो मैंने उसको मिसाल से समझाया। मैंने कहा देखो साहब, लिक्विड लिक्विड है, पानी लग गया कपड़े पर तो निचोड़ोगे, लेकिन जूस लग गया लिक्विड वो भी है, तुम कहोगे निचोड़ना काफी नहीं, धोवो क्योंकि इसके रंग का दाग लग जाएगा। मैंने कहा इस्लाम में दोनों पाक हैं, लेकिन हुक्म दोनों का अलग तुमने समझा। उसके बाद तीसरा लिक्विड लाओ पेशाब, वो लग गया तो उसको तो नापाक मानोगी, उसको देखोगे शरीयत कितनी देर में इसको पाक करार रही। तब मैंने कहा फिर शराब, मैंने कहा आखिर में एक चीज है वो भी लिक्विड है, वो ना धोना धोने का मसला बाकी रखेगा ना दाग का, उसको कहते हैं तेजाब, तेजाब भी लिक्विड है, वो अगर लग गया कपड़े पर क्या होगा, खत्म, उसकी बुनियाद मिट जाएगी। मैंने कहा यही मामला गुनाहों का है शरीयत, ये गुनाह है, तुम्हारी आंख गंदी हो जाएगी, जुबान गंदी हो जाएगी, ये गुनाह है, उसमें शरीयत कहेगी हाथ काटो, ये गुनाह है, तोहमत किसी पर लगे कहेगी शरीयत 80 कोड़े मारो, ये गुनाह है वो कहेगा ये शादीशुदा था इसने जिना किया तो रजम करो संसार करो। मैंने कहा लेकिन ये गुनाह है उसमें शरीयत कह देगी तू ईमान से खारिज हो गया। मैंने कहा यह है वो तेजाब का खतरा, शक्ल में पानी जैसा था, मामला इसने खराब किया। कहेंगे वो कौन सा मसूम गुना है, मैंने कहा कुफुर का शार इख्तियार करना, कहा वो क्या होता है, मैंने कहा देखो ये चुकुर वो अगर 1000 नमाज पढ़ रहा हो, क्योंकि ये शार कुफर है, उसको क्या कहोगे फौरन ईमान से खारिज, क्यों ये कुफर की अलामत उसने इख्तियार सोख लो उनका लफ पे यू ही लोग उसको कहे इस्लाम से खारिज। इतना बड़ा आदमी वो बार बार उसको कंफ्यूजन हो रहा था बार बार, वो कहते मोल साहब ये कैसे हो सकता है, जिना से तो वो इस्लाम से खारिज हुआ नहीं, तो कर्म से कितनी खारिज। और उधर था वो बहुत नेकदिल आदमी, वो मुझे सुना रहा था कि एक दफा एक मौलवी और एक पंडित और एक ईसाई इकट्ठे आए, पता नहीं कहां क्या कुछ करना था, तो वो मौलवी शर्मा रहा था। मैंने उसको कहा तुम जरा जोर से पढ़ो ना अपनी तिलावत की, सिंधु की ग्रंथ भी और उसके बाद भी सब खत्म हो जाए, जरा जोर से तुम तिलावत करो। उधर से था इस जज्बे का आदमी, लेकिन इधर से उसकी दीन की सता ये थी वो समझ नहीं पा रहा था। मैं समझ गया उसको कंफ्यूजन ये हो रहा है, वो सोचता है टीका लगाने से दिल क्रम बदल गया, वो उसको बयान नहीं कर पा रहा था, उसको कंफ्यूजन इतना हो रहा है। जहां उम्मत के पढ़े लिखे तबके की सता ईमान के बारे में ऐसी हो, वहां जब एक इमाम काम करने लगेगा उसके लिए कितनी मुश्किलात है। और ये मुश्किलात हैं हमें हर जगह, ये सिर्फ इसी जगह नहीं, उम्मत की सता इस वक्त ऐसी है जब हम मस्जिद का मदरसे का चंदा करने जाते हैं, हमें पहले इस आदमी को बताना पड़ता है कि भाई तुझे याद है तू मुसलमान है, पहली बात। फिर जब उसको याद आता है कि मैं मुसलमान हूं, तब हम उसको याद दिलाते हैं कि तू मालदार भी है, तू साहिब हैसियत है, तू मांगने वाला नहीं, तू कुछ दे सकता है। और अगर बहुत मालदार है तब हम उसको याद दिलाते हैं कि इस्लाम में ज़कात फर्ज होती है, साहिब निसाब पर तू साहिब निसाब है, इसका आप सब लोगों को तजुर्बा है, ये सब करना पड़ता है। तब फिर आप उसको कहते हैं कि आपके सबके का ज़कात का चरम का इस्लाम ने एक खास मसरफ मुतय्यन किया है, 1, 2, 3, 4 आठों के 8 मसरफ। फिर उसको समझाते हैं कि उसमें से हमारा भी मदरसा है, उसको भी थोड़ा हिस्सा देना, अपने रिश्तेदारों को उनको भी देना। तब जाके उसको समझ आती है मुझे क्या करना है, तो कभी गैरत आई जल्दी से तो जल्दी जेब में हाथ डाल के निकाल दिया लो साहब, और कभी कहेगा अच्छा मैं भेजूंगा। ये हर काम के लिए, क्योंकि उम्मत की सतह बहुत नीचे चली गई है, इसलिए हमें जब भी काम करना पड़ता है वो इल्म से शुरू करना पड़ता है। ऐसे माहौल में हमें यह फिक्र लेकर जाना है कि हमें जो काम करना है वो बिल्कुल इल्म से शुरू करके जाना है। उसमें हमसे चूक क्या होती है, चूके होती है हम बात करते हैं आखिरी सतह की। हम जब आखिरी सतह की बात करते हैं वो इस आदमी के समझ में नहीं आती, वो वापस कहता है ये मौलवी कौन है, वो मौलवी की दीन की बात को अलायाज बिल्ला जुटलाने लगता है, हालांकि मौलवी ने उसको हक कहा। ये जो नतीजा इस वक्त सामने आ रहा है ये 1, 2, 3, 4 साल का मामला नहीं है, 1854 में गुलाब सिंह का दौर था, वो 1854 में पहला अंग्रेज जो मिशनरी बनाने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लार्क, वो आया और उसका इरादा था, ये उनकी किताब में लिखा है, उसका इरादा था पंजाब से लेकर चाइना तक, क्योंकि चीन का रास्ता तो यही था उस जमाने में, पंजाब से लेकर चाइना तक उसका ख्याल था कि हम मिशनरी की, उनके लफ्जों में है, एक चेन बिछा कर आएंगे। लेकिन वो उसमें कामयाब हुए नहीं, डोगरों ने उनको आम इजाजत नहीं दी थी, वो उस किताब में लिखा है, वो उसका बहुत अफसोस जाहिर करते। लेकिन उस वक्त वो कामयाब हो गए सिर्फ लद्दाख में एक हाई स्कूल बनाने में जो अब तक कायम है। दूसरा, उन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाई थी, रुस्तमगिरी ऐसा कुछ लफ्ज लिखा है, पर शायद आज होना द्रगजन। और तीसरा, उन्होंने लिखा कि एक और डिस्पेंसरी बनाई थी जहां विमेन स्कॉली है। इस उस वक्त वो इसमें कामयाब हुए, फिर वापस चले गए, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, उन्होंने डोगरों ने उनको फिर भी इजाजत नहीं दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो बारामूला में सेंट जोसेफ आया है, उस जमाने में कभी कागा वागा फैला है, तो वो रावलपिंडी में उस वक्त उनकी डायोसिस होती थी ईसाइयों की, वहां से पांगे पर ले आए ये वाला। उन्होंने लिखा है उस वक्त हमने तीन खेमे लगाए, एक खेमा था रहने का, दूसरा खेमा लिखा है फॉर लॉर्ड इबादत के लिए, और तीसरा खेमा लगाया था डिस्पेंसरी, बस इतना था। इससे उन्होंने काम शुरू किया, किया इतनी मेहनत, और वो फख्र से लिखते हैं कि हमारा मिशनरी का सबसे कामयाब स्कूल पूरी रियासत में बारामूला का सेंट जोसेफ है, इसलिए कि वहां हमने दाखिले में वसीउल कल्ब से काम किया। 160 साल में उन्होंने जो मेहनत की खामोश और पूरे एहतियात के साथ, उसका फल इस वक्त यह है। इस वक्त हमें किसी ईसाई से बहस नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि जो उन स्कूलों से फारिग हुआ है वो जहनन इस वक्त ऐसा हो गया कि हमें उसको जवाब देना पड़ रहा है। और ये लॉर्ड मैकाले, एक उनका बड़ा फलास्फर था, उसने कहा था कि हम इस बड़े सगीर को ऐसा तालीमी सिस्टम देंगे कि शक्ल तो इनकी होगी यहां की, लेकिन दिमाग इनका होगा अंग्रेज। वो पूरे बड़े सगीर में अपना वो काम पूरा कर चुके। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पुराना मैट्रिक पढ़ा है, उस जमाने में हम अंग्रेजी पढ़ते थे ग्रामर, तो हम स्टोरी याद करते थे, थर्स्टी क्रो स्टोरी पढ़ते थे जिसका मॉरल था यूनियन इज स्ट्रेंथ, याद करते थे कहानी एक मॉरल के लिए हफ्ता लग जाता है, डेढ़ हफ्ता, वो तो कहते थे ये ठीक है और जायज। लेकिन वही थर्स्टी क्रो और ये यूनियन इज स्ट्रेंथ पढ़ाने वाला आज जहन बनाता है हमारे जवान का, जब ये जवान कुरान का, आदम अलैहिस्सलाम का पैदा करना सुनाता है मिंबर से, जब ये कुरान से सुनाता है इब्राहिम और नमरूद की बहस को, जब ये कुरान से सुनाता है मूसा और हारून के कजिए को, यही थर्स्टी क्रो और बुढ़े की कहानी याद कराने वाला इस हमारे जवान से कहता है तो हम मौलवी शुआसा दिए लो बना। और वो मुसलमान जवान सोचता है सही, उस मौलवी सुन की ही पैदा। और जिस वक्त ये मौलवी इमाम दीन की बात सिखाएगा इसको कि तेरा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, कि देख तू बायां पैर बैतुल खला के अंदर ले जा, दायां पैर मस्जिद में डाल, बताओ ज्ञान अदागी से आज का अंग्रेजी पढ़ा हुआ मजाक बनाता है नहीं बनाता। उस वक्त हमारे उलमा ने फतवा दिया था, कहा हमारी दूर अंदेश निगाहें मुसलमानों देख रही हैं, ये उधर से लैंग्वेज नहीं आ रही है, ये उधर से तुम्हारे रोजगार नहीं आ रहा है, ये तुम्हारे दिमागों को बहकाने का एक खतरनाक जहन आ रहा है, यह जहां इंजेक्शन लग रहा है, जब तुम्हारे जहन मऊफ हो जाएंगे और फिर तुम्हारे ईमान का सौदा होगा। उस वक्त जो उनके करीब तबका लग चुका था वो कहता था इमो कुरदोही वहां मोलिश दोही करा हो गया काम आगे बढ़ा। आज वो जहन जब तैयार हो गया वो अब हमसे कहता है तो कैसे बनो युद्ध सुकूर बने जो बरन हाला हमने तो पहले ही कहा था यह लाइन गलत है। हमारी निगाहें तो देख रही थी कि आगे क्या है, सामने कुछ और है और उसके पीछे कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। वो तो उन्होंने फिरासती ईमानी से देखा था, लेकिन आज ये जुमला आज की उम्मत को कहें, आज की उम्मत को हम ये जुमला समझाएं, हम नहीं समझा सकते। इस वक्त उम्मत की ईमान की सतह बहुत नीचे जा चुकी है, बहुत नीचे है। अब आप आज ये जुमला नहीं कहेंगे, आपको इस वक्त के मिजाज के मुआफिक उनको बात बतानी है। आज जब आप उनको आखिरत की बात कहेंगे वो वापस कहेंगे क्या शासा नोज बिलाय में दैयल बना खसना मा मुशीर मा चाहे शिरो हिसाब निमाज का सुन इमाम सुन इमाम सुन है ऐसा ये हकीकत नहीं होती। ये उनका वो जहन बोल रहा है जिसको हमारे अकाब ने उस वक्त कहा था कि हम जानते हैं ये क्या आ रहा है। उस जमाने में एक एक मिनट को वो नाप से तोलते थे दीन के लिए, आज के जमाने में वो एक एक मिनट को तोलते हैं दुनिया के लिए। आज आपके खुतबे के लिए टाइम नहीं है उम्मत के पास, इसलिए ये इमाम की जिम्मेदारी है वो आज के माहौल के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करे, अपनी तैयारी करे। आप आज उनको कोई ऐसी बात सुनाएंगे वो होगी वाकई भी उनकी बात, लेकिन उनके अंदर अभी इतनी इस्तेदाद नहीं है, अभी वो फराइज पर खड़े नहीं है। आप उनको अभी सलातो तस्बीह आम आदमी को देंगे वो घबरा जाएगा, हालांकि सलातो तस्बीह दीन की चीज नहीं है। इस्तेदाद कम हो रही होता है, जैसे डॉक्टर कोई दवाई देने से पहले कैप्सूल देगा म्यादे को तैयार करने के लिए, इसलिए आपको इतनी तैयारी करनी है उनको बात समझाने के लिए जो बात आप कहना चाहते हैं उनका म्यादा उसको कबूल कर सके। वो बहुत कमजोर हो गया बुखार से, जैसे म्यादा कमजोर होता है ये तप मत का मेरा गोट से दिवा डबल सोट सही तप से दिवा लवास नरम सही वैसे दीवान नरम बद आदू बचता तुम देना चाहोगे तो इसी यथा तर दिमाग बचता, लेकिन उम्मत में इस वक्त ऐसी इस्तेदाद नहीं है। और उस वक्त हमसे चूक होती है, हम बोलने वालों से ये कि हम ले जाते हैं वाकई तैयारी करके मेहनत करके बहुत अच्छी चीज, लेकिन सामने वाले की इस्तेदाद इतनी। इस वक्त दुनिया में बहुत मजबूरियां पैदा हो गई हैं, मगन वही तुम तलाश बुरे नालाज बनाई जो सोचो कि बुरे नालुक पोरमुत बड़ो बड़ो कैसे बोझ अस पूरी देवबंद लकुट देवबंद से हटा तैयार वह बंडपुर वह लाल बहादुर वह सोपुर दस अलीगढ़ पढ़ित हो ना अलीग इस लेखान चाहे सो डॉक्टर चाहे इंजीनियर वकील सो वन तस दस अलीगढ़ पढ़ित तस लकुट अलीगढ़ा बनाओ यह कत वन जो वहां से पढ़कर आया मे दी तु मे बुरे लगे तु पोमुत बरन लहान चल बनाओ इसलिए लकुट बरन लहान दस अत नाल सुना फेरन फिर लेकिन अव्वल वहला में पहली बात में तुम किसी को यह जवाब दोगे तो लड़ाई वहीं से शुरू हो जाएगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। ये वाला इंजेक्शन आप पहले नहीं दोगे, आप पहले उनको ईमान की अहमियत बताओ, आप पहले उनको यह समझाओ मेरे भाई कहां हम और कहां नबी अकरम अल्लाह ने हमको कैसा प्यारा पैगंबर दिया, और ये ईमान बहुत नाजुक है, फिर ईमान की चीजें सिखा दो कि देखो हम मानते हैं ईमान में तौहीद अल्लाह। जब हम कहते हैं अल्लाह है तो एक बड़ी दुनिया हमसे कट गई, जो ये कहते हैं इस कायनात का बनाने वाला कोई नहीं, हमारा उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। इसको हर अनजान से अनजान आदमी समझता है, फिर उसके बाद हम कहते हैं वो अल्लाह है लेकिन है वह दहू
शरीक।
एक बहुत बड़ा तबका हमसे कट जाता है। दुनिया में ऐसे फिरके बहुत मौजूद है जो कहते हैं खुदा है लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे, ये जो देवी देवता इतने सारे मानते हैं वो हमसे कट हो जाते हैं। तभी ये ईमान तो यही है, और अल्लाह को हम मानते हैं कमा हुआ भी अस्माई ही, ये तो अल्फाज एक जैसे हैं हमारे, हम भी सुनते हैं अल्लाह भी सुनता है, लेकिन हमारा सुनना ऐसा दो आदमी इकट्ठे बोलने लगे तो हम उनको वापस कहते हैं दो मत बोलो, कहां दो की मैं सुनूंगा एक की सुनूंगा। लेकिन अल्लाह को ताकत है कि अगर दुनिया के इस वक्त बसने वाले 700 करोड़ इंसान एक टाइम अल्लाह से पुकारे या अल्लाह, तो हमारा यकीन है कि हमारा अल्लाह ऐसा है कि वो 700 करोड़ आदमी की आवाज को भी एक वक्त सुन लेगा और हर एक की आवाज को अलग अलग पहचान लेगा। हम तो ऐसे अल्लाह को मानते हैं। और जब कहोगे हमारा ईमान है रिसालत पर नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर तो हम एक लंबी हकीकत मानते हैं। हम उस वक्त ये मानते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को समझाने के लिए उनकी हिदायत के लिए लाखों पैगंबर भेजे, उनमें सबसे पहले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बीच में बहुत सारे आए मशहूर मशहूर पैगंबरों के नाम बताए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूसुफ, सब इतने सारे, और सबसे आखिरी आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें हम जैसे इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि आदम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम तमाम पैगंबरों को मानते हैं, उसके साथ साथ एक लाजमी जुज है जो अगरचि कलमे में वहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमारे अकायद में है कि इन सब में सबसे बड़े, सबसे अफजल, सबके इमाम और सबके सरदार हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हकीकत है और इसको वो सब जानते हैं। और फिर इस रिसालत में हमें तस्लीम है इसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सलम से हम मानते हैं। उन्होंने फरमाया मैं आखिरी पैगंबर, मेरे बाद कोई नबी आने वाला, ये ताज है आपके मुबारक सर पर, वरना सब पैगंबर पैगंबर हैं, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर का ताज है खातमुन नबी आखिरी। लेकिन इसको बताने के बाद खुद हुजूर ने फरमाया कि बहुत सारे तादाद में आएंगे, 30 के अदद का तज़किरा हदीस में है, तो हम उसको कसरत पर माहूल करते हैं कि बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कहेंगे मैं नबी हूं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सब गलत धोखा देने वाले होंगे, अगर ना आए तो ये पेशींगोई गलत साबित होगी, इसलिए आना उनका जरूरी है, लेकिन आएंगे तो हमें क्या हुक्म दिया। हदीस में आया उन्होंने कहा माकाना सहाशन वला सखाबन, ये तो ऐसा प्यारा रसूल था मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आपकी जुबान से सख्त लफ्ज नहीं निकला, फौहश लफ्ज नहीं निकला, लेकिन इन 30 के बारे में दो खतरनाक वर्ड आपने इस्तेमाल किए, एक कहा कज्जाब, दूसरा कहा दज्जाल, जिस मुबारक जुबान से कोई सख्त लफ्ज नहीं निकलता था। इस जगह बयान करते करते फरमाया कि वो जो दावा करने वाले होंगे वो कज्जाब भी होंगे दज्जाल भी होंगे। फिर आप इमाम हैं, आप उसे समझा सकते हैं काजिब और कज्जाब के फर्क को, दाजिल और दज्जाल के फर्क को। कज्जाब सबसे बड़ा झूठा, बार बार झूठ बोलने वाला, दज्जाल सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाला, बार बार फ्रॉड करने वाला। उस मुबारक जुबान से ये दो संगीन अल्फाज क्यों निकले, इसलिए कि कयामत तक उम्मत को वार्निंग में रखना था, अलार्म देना था कि बहुत खतरनाक होंगे, और फिर अपने अमल से साबित किया क्योंकि उसी जमाने में वजूद हो गया मुसलमान कज्जाब का, अस्वद अनसी का, सजा औरत का, अमलन बताया कि देखो उनसे प्रूफ नहीं मांगोगे, उनसे ये नहीं कहोगे सबूत लाओ सबूत लाओ तुम कहां से पैगंबर आए, बल्कि ये फरमाया क्योंकि फ्रॉड टाई है, ये हदीस ने कहा जो भी दावा करेगा वो फ्रॉड होगा, इसलिए फौरन भेज दिया जाओ समझाओ और इनका कला कमा कर दो, खत्म कर दो। یہ خود حضرت نے کیا اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بعد امت کو سنبھالنے والے انہوں نے کیا. یہ ہم محمد رسول اللہ تمہیں مانتے ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا یہ ہم محمد رسول اللہ میں عقیدہ مانتے ہیں. کیا تین پرانے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے جن کو بہت تمنا تھی اس امت میں آنے کی, ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن چونکہ بحثیت پیغمبر نہیں آنا ہے اور بحثیت امت ہی کے آئیں گے, غیر سے یہ نظام کیا جب وہ آئیں گے تو پہلی نماز پڑھیں گے اس امت کے امام کے اقتداء میں, تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ یہ بحثیت پیغمبر آئے ہیں. اب کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا میں آیا میں آیا, اس لیے قرآن بھرا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے. قرآن بھرا ہوا اس لیے ہے حضرت عیسیٰ کے تذکرے سے کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں, امت پہچاننے میں خطا نہ کر جائے, اس لیے ان کے پورے نسب نامے کو وہ حالات کو بیان کر دیا. عیسیٰ ہوں گے, ابن مریم ہوں گے, باپ کوئی نہیں ہوگا, یہ سب اس لیے بتایا کہ ان کو پھر آنا ہے قیامت سے پہلے, کوئی گڑبڑ والا بیچ میں دعویٰ نہ کر دے جیسے مرزا نے کیا تھا کہ میں ہوں. یہ اس لیے آیا اور پھر کنفیوژن پیدا نہ ہو جائے اس کو پہچاننے میں ادھر سے, اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بھی بیان فرمایا کہ اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اس وقت ہوں گے, یہ بھی بیان فرمایا فلاں جگہ اتریں گے, یہ بھی بیان فرمایا فلاں جگہ شرکت کریں گے, یہ بھی فرمایا پھر اس طرح کریں گے, پھر نکاح ہوگا, حتیٰ کہ یہ تک بیان فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو مدینہ منورہ میں روضہ پاک میں اس خالی جگہ میں دفن کیے جائیں گے جہاں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں روضے میں جگہ خالی ہے. یہ ساری ڈیٹیل اس وجہ سے دی گئی تاکہ عوام کو پہچاننے میں اس وقت کنفیوژن نہ ہو جائے. یہ ہم سب مانتے ہیں کس میں, محمد رسول اللہ, اور اسی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنے پیارے پرانے پیغمبر ہیں وہ برحق ہیں مگر ان کی شریعتیں اب نہیں چلیں گی. اب اگر شریعت چلے گی وہ چلے گی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھائی یہ معاملہ بہت نازک ہے, ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں ہر بات کا جواب دینا ہے, عمل کریں گے اس کا بھی جواب دینا ہے, عقید میں فرق آیا اس کا بھی جواب دینا ہے, اور عمل میں کوتاہی ہو گئی تو آدمی فاسق اور فاجر بن جاتا ہے. لیکن ایمان میں اگر کوتاہی ہوئی, ایمان تو یقین کا نام ہے, یقین میں جو ہی تذبذب پیدا ہو جائے گا تو تمہارا معاملہ میرے بھائیوں بگڑ جائے گا. لہذا کیا کرو گے, کریں گے یہ کہ ہر ایسی مجلس سے جہاں ایمان میں تذبذب آنے کا خدشہ ہو, ایمان نام ہے یقین کا اور تذبذب اس کے خلاف ہے. اگر تذبذب آ گیا, شک آ گیا, ایمان رخصت ہو جائے گا. ہر کتاب ایسی جس سے تذبذب کا اندیشہ ہو بچنا پڑے گا, ہر سوسائٹی ایسی جہاں تذبذب آئے گا تو بچنا پڑے گا, ہر ویب سائٹ ایسی جہاں خدشہ ہو کچھ نظر آئے گا, انٹرنیٹ پہ خدشہ ہو نظر آئے گا, ٹیپ ریکارڈ میں, ہر ایسی مجلس سے پرہیز کرنا پڑے گا جہاں سے یہ ایمان متاثر ہونے کا خدشہ ہو. یوں ہم جب بات سنائیں گے اس انداز سے کچھ آسان بنا کر, مثال میں نے دی امت کی سطح وہاں ہے تو ہمیں اس میں خود تیاری کر کے جانا ہے اور بات سیکھ کر جانا ہے, ہمیں بتانی کیا ہے, تو اس میں کوئی عیب نہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے سکالر ہیں, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, وہ یادداشتیں لکھ کر رکھتے ہیں, وہ تیاری کر لیتے ہیں, وہ سبق کو یاد کرتے ہیں, اور یہ تو قرآن حدیث کا معاملہ ہے. ہم کو تو مر کے دم تک طالب علم ہی بن کے رہنا ہے, اور باطل میں کوئی طاقت ہوتی نہیں. قرآن پاک نے کہا یہ اسلام یہ تو لیظہرہ علی الدین ہو کر رہے گا, غالب ہو کر رہے گا. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس میں کوئی نقص پیدا کرنے والا نہیں ہے, یہ تو میری اور آپ کی آزمائش کے لیے مرحلہ آتا ہے. یہ تو آزمائش ہے, کون اس وقت کیسی قربانی دے گا, کون اس وقت کیسی تیاری کرے گا, کون اس وقت کیسی مصلحت سے کام لے گا, کون اس وقت اپنی صلاحیت کو اس باب میں لگائے گا. ایک نے لکھا تھا اخبار میں, اس نے لکھا تھا اسلام سپریم مذہب ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کچھ لوگ مرتد ہو گئے. میں نے لکھ دیا جواب اسی کا نام لے کر, میں نے لکھا اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہزاروں اسلام سے نکل جائیں لیکن اس کا نام لکھ کر لکھا کہ اگر خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا یہ شخص اسلام سے نکل جائے تو میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے ماں کو افسوس ہوتا ہے میرا بیٹا روٹ کر کیوں چلا گیا, ہماری کوشش تو ہے ہم اس کو کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس لائیں. جیسے ماں اس وقت دل سے دعائیں دیتی ہے اس آدمی کو جو اس کے روٹے ہوئے بچے کو واپس لائی, ہم منتظر ہیں کہ ہمارے محبوب کے دل کو کب ٹھنڈک پیدا ہو اور ان کی دعائیں ہم کو مل جائے. ہم تو اس لیے کام کر رہے ہیں, ہم تو اسلام کی کمزوری اور طاقت کو دکھانے کام نہیں کر رہے ہیں. وہ تو قرآن نے اعلان کر دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ,
وہ تو غالب ہے, دلائل سے غالب ہے, قوت سے بھی غالب ہوتا ہے جب اللہ جس کو جیسے چاہتے ہیں, دلائل سے تو ہر وقت غالب ہے. اور اگر معاملہ ہوتا دلائل کا, ادھر سے چلتا ہے دھوکہ, ادھر سے چلتا ہے دھوکہ, کھانا دے دیں گے, پینا دے دیں گے, یہ دیں گے وہ دیں گے, ادھر سے یہ چلتا ہے. اگر ادھر سے تبلیغ ہوتی ہے ادھر سے بھی تبلیغ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں بائبل یہ کہتی ہے, ہم کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے, لاؤ مقابلہ. لیکن دھوکا اور استحصال, اب تھرڈ پرائمری میں جن بچوں کو برتس نہ دیا وہ کیا جانے ہی کیا ہوتا ہے, سیونتھ میں جن کو برتس نہ دیا وہ کیا جانے ہوتا ہے, جس غریب کو کہا آتے رہو آتے رہو کوئی خیال ذرا سے روپی دماغ روپی پوپی نیچی ہی, وہ تو ایک افواہ پھیلائی جاتی ہے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اور ہمارے جائے لوگ بھی اسی کو پھر چلا دیتے ہیں بات, حالانکہ ایسا نہیں. وہ پھر سنو کیوں سخاوت بول, یہ اسلام ہے جو سخاوت سکھاتا ہے, یہ کس نے آپ کو دھوکہ دیا, کس سے سنو یہ مان نہیں یہ مان, کوئی مطلب کہیں نکالنا ہوگا وہاں تو کچھ کرتے ہیں, ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. وہ ایسی سلیگمت آف مصیبت اسپات کا سلائم بدل کر جی گرو دیو جی, اور یہ تم شر پن مال ماجن تھی تاوان کرنا تہن مول موجی تم وقت مارنے پہ لڑکے سمجھا یار یہ جرم تہد اگر غربت تھی تو وچنا گوڈ ہوسٹل کم کیا ہوں, لیکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آتی ہے, غیب سے رہبری بھی ہوتی ہے. میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا لیکن میں نے سوچا چونکہ سری نگر مرکز ہے, آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, آپ سنبھالیں گے مناسب طریقے سے, تو اس کا اثر پورے علاقوں میں پڑتا ہے. گامن لوکش مزوری کھسنا سری نگر, گامن لوکش اوری اور کاروبار کرنا سری نگر, اس لیے یہ پہ یوز کاروائی گھسان یہ آنن فانن واتا پور ریاست, اس لیے یہ چم سے فکر زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ دین اس توفیق خوب خوب فکر کرنے خاطر اور توفیق دین اس لائن میں کام کرنے خاطر. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.